जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल अनिताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवज्यकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रूपा जी की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रूपा जी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। We are reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, Narad Tatha Raja Prachinbari Ke Madhya Vartalab, Shlok Kramank 69. Satvai Kanishte Manasi Bhagavat Parshvavartini तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपरज्यावभासते सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपरज्यावभासते सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपराज्यावभासते। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपराज्यावभासते सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपराज्यावभासते सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपरज्यावभासते। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपरज्यावभासते। शब्दार्थ भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सत्व एकनिष्ठे पूर्ण कृष्ण चेतनामी मनसी मन में भगवत भगवान के साथ पार्श्ववर्तिनी लगातार साथ रहने से तम अंधग्रह चंद्रमसी चंद्रमा में इव सदृश इदम यह दृश्य जगत उपरज्य संबंधित होकर अवभासते प्रकट होता है। कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसे मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर सहचार्य जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसे ही देख सके जैसे कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता लेकिन यह राहु नामक अंधग्रह के समान प्रकट होता है जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। तात्पर्य बड़ा तात्पर्य है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि सारी इच्छाएं एक एक करके मन पटल पर दृष्टिगोचर होती रहती है किंतु कभी कभी भगवत कृपा से इच्छाओं का सारा भंडार एक ही बार में दृष्टिगोचर हो जाता है। ब्रह्म संहिता के पांचवें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होता है तो भौतिक इच्छाओं का भंडार न्यूनतम रहता है। दरअसल यह इच्छाएं स्थूल शरीर के रूप में प्रतिफलित नहीं होती, अपितु वे भगवान कृपा से मन पलट पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रसंग में पूर्ण चंद्र के समक्ष होने वाला अंधकार, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, राहु नामक एक अन्य ग्रह के रूप में होता है। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार यद्यपि राहु ग्रह अदृश्य है, किंतु इसे ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी कभी यह ग्रह पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है, जब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा के निकट विद्यमान प्रतीत होता है, तब वह ग्रह चंद्रमा की कक्षा में निकट विद्यमान प्रतीत होता है। आधुनिक चंद्र यात्रियों की विफलता का कारण यही ग्रह हो सकता है। रूपात बोलते हैं कि वह ग्रह पर राहु पर जाते हैं, न कि चंद्रमा पर। तब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा में आधुनिक यात्रियों की विफलता का कारण यही राहु ग्रह हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चंद्रमा की यात्रा पर जाते हैं, वह संभवतः इस अदृश्य ग्रह की यात्रा करते हैं। वे चंद्रमा तक न जाकर राहु ग्रह पर पहुंचकर ही वापस चले आते हैं, इसलिए दुर्भाग्य और बढ़ रहा है। इस संदर्भ के अतिरिक्त बात यही है कि जीव में भौतिक सुखभोग की अत्यंत इच्छाएं रहती है और उसे एक स्थूल शरीर से अन्य शरीर में तब तक देहांतर करना पड़ता है जब तक इन इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच पाता। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भक्ति में तल्लित होने पर ही एक झटके से जीव भूत तथा भविष्य के मनोरथों से मुक्त हो जाता है। सत्वैक निष्ठे, तब भगवत कृपा से सारी वस्तुएं एक साथ मन के भीतर प्रकट होती है। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माता यशोदा का उदाहरण दिया है, जिन्हें भगवान के मुख के भीतर सारा दृश्य जगत दिखा। भगवान की ही कृपा से माता यशोदा को श्री कृष्ण के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड तथा लोक दिखाई पड़े। इस प्रकार कृष्ण भक्त एक साथ अपनी सुप्त इच्छाओं को देख सकता है और भावी देहांतर से सदा के लिए मुक्ति पा सकता है। यह सुविधा विशेषता भक्तों को प्रदान की जाती है, जिससे भगवान के धाम वापस जाने का रास्ता साफ हो जाए। यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है कि जिन वस्तुओं का अनुभव हमें इस जीवन में नहीं होता, उन्हें भी हम क्यों देखते हैं। जो कुछ हम देखते हैं वह स्थूल देह की भावी अभिव्यक्ति होती है या जो पहले से ही मन पटल पर संचित होता है। क्योंकि कृष्ण भक्त को भावी स्थूल देह धारण नहीं करना पड़ता, अतः उसकी अंकित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती है। इसलिए कभी कभी हम स्वप्न में ही ऐसी वस्तुओं दिख जाती वस्तुएं दिख जाती है जिनका हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं हुआ रहता। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरेर्नाम 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 एव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर सहचर्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसे ही देख सके जैसे कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक अंधग्रह के समान प्रकट होता है जो पूर्ण चंद्रे होने पर ही देखा जाता है। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 29वां नारद तथा राजा प्राचीनबरी के मध्य वार्तालाप और श्लोक क्रमांक 69। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम अर्पण करना चाहूँगा, अपने गुरु महाराज और सभी उपस्थित वैष्णवों को, खास करके रेवतीपति प्रभु, अंतर्द्वीप प्रभु, परशुराम प्रभु और अन्य सभी सीनियर भक्तों को, कि मुझे वो आशीर्वाद दे कि श्रीमद् भागवतम जैसे अमल पुराण के ऊपर मैं कुछ चर्चा कर सकूं और मेरा शुद्धिकरण कर सकूं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि हमारे जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा है, वो हमें तभी समझ में आती है जब भगवान की हम पर कृपा हो। ये एक पहला पॉइंट है। और प्रभुपाद बताते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु त भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाभी। वहाँ पे बताते हैं कि जैसे जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं वो एक बीज के समान होते हैं, और जब बीज को बोया जाता है तब उसमें से एक पेड़ उत्पन्न होता है और उसको फल लग जाते हैं। उसी तरह से हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, उसके फल हमें मिलते हैं। लेकिन अगर उस बीज को भुना जाता है, फ्राइड किया जाता है, तो उसमें से अगर उसे बोया भी जाए तो उसमें से कोई पेड़ नहीं आएगा। उसी तरह से जब कृष्ण भक्ति हम करते हैं तो हमारे कर्मों के जो बीज होते हैं उन्हें भुना जाता है और उसके कर्मफलों को, उसमें कर्मफल हमें भोगने नहीं पड़ते हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कि कृष्ण के उपस्थिति में हमें सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है। जब कृष्ण के संपर्क में हम आते हैं तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, राहु जो ग्रह जो अदृश्य रूप में होता है और वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पूर्ण चंद्रमा होती है तब वो दिखाई देता है हमें। तो प्रभुपाद और एक टिप्पणी भी करते हैं कि शायद जो लोग चंद्र की यात्रा करना चाहते हैं वो राहु की यात्रा करते हैं, न कि चंद्र की यात्रा, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं। और प्रभुपाद और एक बताते हैं कि हम कर्म के बंधन से, ब्रह्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम तभी बाहर आ सकते हैं जब कृष्ण भावनाओं को हम स्वीकार करेंगे और हमारी इच्छाओं से पूर्ण तरह मुक्त हो जाएंगे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में जो जिस तरह से यशोदा मैया ने ब्रह्मांड देखा था, दृश्य ब्रह्मांड देखा था भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल पर, उसी तरह से हमें सब कुछ जब दिखाई देगा क्लियरली तभी हो जाएगा। और प्रभुपाद अंत में एक बहुत ही सुंदर चीज़ बताते हैं कि जब भक्त होते हैं तो उनके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन उन्हें उन्हें कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ते, दूसरे जन्म के रूप में, दूसरे एक फॉर्म के रूप में, यानी दूसरे शरीर के रूप में, क्योंकि वो सपना में ही ऐसे भोग लेते हैं। जब वो सपना देखते हैं तो उनको ऐसे सपना दिखाई देते हैं जो उनके वास्तव में अगले जन्म में लेने पड़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद अंतिम में एक टिप्पणी करते हैं कि इसलिए कभी कभी हमें स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिखाई देती है जिनका हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं हुआ होता है। तो ये जो श्लोक है तो श्रीमद् भागवतम के जैसे चौथे स्कंद में आया है, 29वें अध्याय में। एक चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है जो है कि जले तैलम खलु गुह्यम पात्रे दानम मनगपि, और उसी तरह से प्रज्ञे शास्त्रम स्वयं यति विस्तारः वस्तु शक्ति ही। इसका अर्थ इस तरह से है कि जले तैलम, जैसे एक जल का पात्र होता है उसमें अगर हम तेल का छिड़काव कर दे तो वो तेल विस्तारित हो जाता है, फैल जाता है। खले गुह्यम, खलनायक जिसे बोलते हैं, तो एक कपट व्यक्ति, तो खले गुह्यम, अगर किसी खलनायक को या किसी खलु व्यक्ति को अगर हम गुह्य चीज़ बता दे तो वो सबको बता देता है, वो विस्तार कर देता है उसे जो बताना नहीं चाहिए। वो पात्रे दानम, थोड़ा सा भी अगर हम दान अगर पात्र व्यक्ति को दे दे तो वो भी बड़ा काम में आता है। और उसके बाद प्राज्ञे शास्त्रम, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक सुशील व्यक्ति को अगर हम शास्त्र का ज्ञान दे तो भी वो भी उसका विस्तार करता है, वो भी उसका प्रचार करता है। स्वयं विति विस्तार, यानी वो स्वयं विस्तार करते हैं। वस्तु शक्ति, यह उसके स्वभाव अनुसार सब चलता है। जैसे तेल का स्वभाव है विस्तार होना, खलनायक व्यक्ति का स्वभाव है चीजों को फैलाना, पात्र व्यक्ति का स्वभाव है कि दान को उपयोग में ठीक से लाना, और बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव है कि शास्त्रों को थोड़ा भी ज्ञान भक्तों में, अन्य लोगों में बांटना। तो यह है स्वभाव। उसी तरह से जो हमारा मन है, तो मन के बारे में कहा गया है कि मन भी विस्तार करने की शक्ति रखता है। मन में भी एक शक्ति है कि विस्तार है। कोई भी अगर धागा पकड़ ले मन, तो वो इतना उसका विस्तार कर सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। यह विस्तार हानिकारक भी हो सकता है और यह विस्तार लाभदायक भी हो सकता है। जैसे हानिकारक उस प्रकार से हो सकता है कि उसे अंग्रेजी में फैंटेसी कहते हैं, कुछ चीज को लेकर, मानो कि कोई भगवान के मंदिर में भी आया हो और भगवान के दर्शन भी कर रहा हो, तो मन दूषित रूप से कैसे विस्तार कर सकता है कि मानो कृष्णा ने या राधा रानी ने जो ड्रेस पहना हो तो वो ड्रेस को देख ले तो बोलेंगे ये ड्रेस है, इसका नीला कलर है, यहीं तक बस कृष्ण से संबंधित होता है। बाद में ऐसा ही मेरा एक नीला ड्रेस है, फिर बाद में वो नीला ड्रेस मुझे इस तरह से मिला था, ये करते 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 मन कहाँ से कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। उसी तरह से अगर हम कृष्ण का नाम ले ले, जैसे 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमको देखना चाहिए भगवान को सब तरह से, सब जगह पर, तो उसी तरह से अगर कोई एक कृष्ण भावना भावित अगर चीज़ हमें मन में याद आ जाती है तो हम उसको विस्तार कर सकता है। अगर हम जगन्नाथ के दर्शन ले ले तो हम कैसे विस्तार कर सकते हैं, जगन्नाथ भगवान, मैं जगन्नाथ रथ यात्रा गया था, फिर वहाँ पे महाराज ने लेक्चर दिया था, फिर जगन्नाथ की कैसी पंडी हुई थी, फिर वो लेक्चर में क्या कहा था, फिर लेक्चर में ऐसा कहा था कि हमें जगन्नाथ के प्रति शरणागत होना चाहिए, तो शरणागत की विधि ये हुई थी, तो मुझे ये शरणागत विधि में मुझे बहुत ही दृढ़ता से जुड़ना चाहिए, तो मेरा जो ये है वो इस तरह से, ऐसे करके मन ना उसको विस्तार कर सकता है। लेकिन अनंत काल से मन में जगन्नाथ के दर्शन खुल गए, जगन्नाथ भगवान की जय, राधा वृंदावन की जाए, गौर निताई की जाए, शिल प्रभुपाद जी की जाए। लेकिन अनंत काल से मन में दूषित चीजें जा बैठी है, तो हमारा काम है अभी कि इन मन में से दूषित चीजों को निकालना और मन में कृष्ण भावना भावित चीजें डालना, यानी कृष्ण भावना भावित विचार डालना। जो गंदे विचार है, जो भौतिक विचार है, जो आसक्ति के विचार है, उनको निकाल कर कृष्ण भावना भावित विचार डालना। हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि मान लो ये हमारे मंदिर के हॉल के उतना एक सपोज स्टोर है और उसमें कई सारे बॉल्स डाले हुए हैं, गेंदे डाली हुई है, और सभी की सभी गेंदे काले रंग की है। ये काला रंग सूचित करता है कि भौतिक विचार, और बस एक ही ऐसा ऊपर से होल है जिसमें से हम हाथ डाल सकते हैं और हमको गेंद उठाने के लिए कहा जाए, तो प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी होती है, उस प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के अनुसार अगर सभी काले गेंदे हैं उसमें, अगर हम हाथ डाल के आंख मूंछ कर भी किसी गेंद को उठाए तो गेंद काले आने के संभावना कितनी है? 100%। इस तरह से जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके मन में सारे दूषित भौतिक इच्छाओं के विचार है, तो कोई भी इच्छा उसके मन में प्रकट होगी कुछ भी देखने के बाद तो वह भौतिकी होगी। तो अभी हम ये भौतिक इच्छा को कम माइनॉरिटी में कैसे लाना है, तो उसका एक ये है कि ये भौतिक इच्छाओं एक एक गेंद को फेंक देना है और दूसरे उसमें सफ़ेद गेंद डालना है। अभी मेरा ये है कि अगर हाथ डाल के सफ़ेद गेंद निकलने के चांसेस कितने हैं ऐसे हॉल में जिसमें सारे गेंदे काली है, तो सफ़ेद गेंद निकल के चांसेस है 0%। उस तरह से एक भौतिक व्याधि व्यक्ति में कृष्ण संबंधित विचार आने की संभावना कितनी है? 0%। तो हमको क्या करना है, ये काली गेंदें निकालना है और सफ़ेद गेंदें डालना है। यानी जितने हम कृष्णा भावना भावित कार्य करें, विचार करें, उतने हमको ज़्यादा अच्छा, और जितने भौतिक विचारों को फेंक दे उतना अच्छा है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये भी करना चाहिए कि कृष्ण भावना के गेंदों को डालना चाहिए, इतने गेंदे डालना चाहिए, अगर ये 10 लाख है तो उसको 10 करोड़ डालना चाहिए सफ़ेद गेंदे, ताकि जब हम एक भी अगर ऐसा उठाए गेंद कोई भी तो संभावना कितनी हो जाएगी, हाँ बढ़ती बढ़ती जाएगी, और काले गेंदों को फेंकना भी है। तो ये है कृष्ण भावना भावित आंदोलन का लक्ष्य, और ये कब पूरा हो सकता है? ये तभी पूरा हो सकता है जब हम इस बद्धावस्था से निकलने का प्रयास करें। तो इच्छा शक्ति ही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो हमारे भगवद गीता में एक श्लोक आता है 3rd अध्याय के 27वां श्लोक, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो इस श्लोक के अनुसार सभी व्यक्ति 3 गुणों से बद्ध है। भगवान श्री कृष्ण 2rd अध्याय में भी अर्जुन को बताते हैं कि हमको 3 गुणों के परे जाना चाहिए, उस श्लोक में बताते हैं। तो हमें जो 3 गुण जो बांधे रखते हैं वह है सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, और ये 3ों गुण भी बहुत ही शापित है हमारे लिए, शाप के समान है, क्योंकि ये जो 3 गुण है ना हमें भक्ति करने में बाधा लाते हैं। एक बद्ध जीव का ऐसा मतलब होता है, अर्थ होता है कि जो बांधा गया है। किससे बांधा गया है? बांधा गया है वो 3 रस्सियों से जो रज सत्व और तम की है, और इस रस्सियों के अनेक फेरे हमारे इर्द गिर्द लग चुके हैं। जैसे वो इंद्रजीत जो तीर भेजते हैं हनुमान को पकड़ने के लिए, तो वैसे तो हनुमान ने तो स्वयं को बांध लिया था, लेकिन उस तरह से हमको बांधा गया है 3 रस्सियों द्वारा। जो तमोगुण की रस्सी है वो हमें आध्यात्मिक जीवन में आलसी बना देती है पूरी, तो भौतिक जीवन में तो आलसी होती है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा महत्व है तमोगुण का वो है कि आध्यात्मिक दृष्टि से हमको पूरी तरह से आलसी बना देती है। कुछ भी कार्य करने में हमें कोई भी उत्साह नहीं देती है। तो हम तमोगुण का जब प्रभाव पड़ता है हम पर, तो हम आध्यात्मिक दृष्टिया आलसी हो जाते हैं, आलसी नंबर 1 हो जाते हैं। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण जब से बांधा जाता है तो आलसी तो है ही, हम तमोगुण की वजह से रजोगुण का उल्टा प्रभाव पड़ता है कि भौतिक दृष्टि सक्रिय हो जाते हैं, और ही प्रॉब्लम हो जाता है कि इसके वजह से अध्यात्म का स्वीकार करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं रजोगुण की वजह से। और सत्वगुण ऐसा है कि फॉल्स स्पिरिचुअलिटी का हमको भ्रम में डाल देती है, कि कुछ कुछ अच्छे सारे मंडेन मोरालिटी जो होती है उसको ही हम अध्यात्मता समझ कर फंस जाते हैं, जैसे कविता करना, फिर बाद में मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना, ऑफिस में समय समय पर जाना, समय के साथ आना, कोई गफला न करना, कोई मैंने बहुत सारे अंग्रेजी में लिखे थे, हिंदी में अनुवाद करना सोच सोच के बहुत मुश्किल होता है। तो कभी चोरी नहीं करना, कभी ये नहीं करना, इन चीज़ों में लोगों को लगता है बस मैं बहुत अच्छा लाइफ जी रहा हूँ। मैं एक बार जब भक्ति में शुरू शुरू में आया था, तब मेरे कज़िन जो मेरा अच्छा काफ़ी क्लोज था, क्योंकि हम एक साथ बहुत बार के क्रिकेट मैचेस देखते थे, तो हमारी गहरी काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। तो मैंने समझा कि अभी ध्यान उसको अभी ये कर देंगे, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं उसके पास गया और उसको बोलने लगा कि भक्ति के सूत्र क्या है। तो वो मुझे बोलने लगा, देख मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा जीवन बहुत ही नियमित रूप से और नीतिमत्ता से जी रहा हूँ, और भगवान है या नहीं है मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो मंडेन मोरालिटी है, एक बार ऐसा कहा गया था कि पुणे के जो स्पेशल जो खास पुनेरी जो लोग हैं, पुनेकर जिसको कहते हैं, वो है, उनको प्रचार करना, भक्ति में लाना बहुत मुश्किल माना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं पुणे है इसलिए पुणे का उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे तो वो लोग काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी नीतिमान है, काफ़ी फिर बाद में काफ़ी अच्छे है स्वभाव से भी, लेकिन उनको भक्त बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो काफ़ी है, उससे अभी आगे आने जाने कोई ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। दैट इज़ इनफ व्हाट दे आर डूइंग। सो ये रज तम और सत्व गुण जो है, ये हमें पूरी तरह से बांध के रखते हैं, और इन तीनों गुणों से के प्रभाव से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तम आलस, रज भौतिक दृष्टि सक्रिय, और सत्व मंडेन मोरालिटी को ही अध्यात्म समझ बैठना। जैसे लोगों को लगता है मैं दूध पीता हूँ, तंबाकू नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मच्छी नहीं खाता हूँ, किसी की छेड़खानी नहीं करता हूँ, कोई इनकम टैक्स ठीक से भरता हूँ, ऑफिस को समय समय पर जाता हूँ, सब नियम मैं फॉलो करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, मेरे सभी से संबंध बहुत अच्छे है, मैं कविताओं में इंटरेस्ट लेता हूँ, फिल्मी गानों में नहीं लेता, मुझे अच्छा म्यूज़िक अच्छा लगता है, सात्विक, मुझे गज़लें अच्छी लगती है, भक्ति गीत अच्छे लगते हैं, तो मैं एक बहुत ही अच्छा उत्तम व्यक्ति हूँ, मुझे यही है जीवन और यही है धर्मता, धार्मिकता, यही है भगवान की सेवा, मेरे काम के प्रति मेरी निष्ठा है, और मुझे क्या चाहिए। तो ये तीनों गुणों में तो तीनों डेंजर है, लेकिन ये सात्विकता कभी कभी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दूर निकालना बहुत मुश्किल होता है, भले ही ये नज़दीक है अध्यात्म से, इसलिए पास होकर भी कितने दूर हो ये जो बोला जाता है, तो यही कारण है कि पास होने के बाद भी हम दूर है बहुत। तो तीनों लोग, एक बार ऐसा पूछा जाए कि कौन ज्यादा पतित है, कौन ज्यादा गड्ढे में है, तो तीनों भी ज्यादा गड्ढे में है। और ये भौतिक जीवन का सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि तीनों गड्ढे में हम फंस चुके हैं। एक गड्ढे से निकले तो दूसरा गड्ढा हमको पकड़ लेगा, दूसरे गड्ढे में से निकले तो तीसरे गड्ढे में फंस जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये कैसे निकल सकते हैं इसमें से, तो इसमें से कैसे निकलना है, तो उसको एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, हम जो ये जो हमारे ऊपर कर्मों, ये तीन रस्सियां हमें जो टाइटन करती है, जोर से बांध देती है, उसका केवल एक ही कारण है कि हमारे पूर्व कर्म, पूर्व इच्छाएं, इन दोनों अनुसार ही बांधा जाता है हमको। तो प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो सभी कार्य जो है ना, वो प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं। अभी एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे एक चीज़ कोई कर पाता है, कोई बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाता है, तो उसको ज़्यादा ऐठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो परिस्थिति है ना, वो उसे इतना सक्षम बनाया है। उसके माता पिता शायद बहुत बुद्धिमान हो, उसका जो घर का जो संस्कार है वो ज़्यादा अच्छा हो, यानी देर इज एन इकोसिस्टम फॉर हिम टू परफॉर्म बेटर। तो ऐसा हो सकता है कि माता पिता बहुत बुद्धिमान है, घर का वातावरण बहुत ठीक है, घर में बहुत शिक्षित लोग हैं, उनको पता है बचपन से कि किस विद्यापीठ में, किस क्षेत्र में जाना है, किस ब्रांच में एडमिशन लेना है, कैसे करना है। तो हमारे बहुत बार क्या होता है कि परिस्थिति अनुसार हमें यश प्राप्त होता है, तो उसके लिए परिस्थिति जिम्मेदार होती है, हम नहीं, और वो परिस्थिति दी जाती है हमारे पूर्व इच्छा और कर्म अनुसार। कोई अच्छे स्थिति में डाला जाता है पूर्व कर्म अनुसार। फिर दूसरा है कि अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं कभी कभी, किसी को बोला जाता है कि आपने इतना अच्छा क्यों किया, तो बोले मेरे पास ये फैसिलिटी थी इसलिए मैंने किया। कोई कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाता है, सचिन तेंदुलकर एक बार पूछा गया उसे कि आप इतने बड़े महान क्रिकेटर कैसे बने, तो बोले वो मेरे बाजू एक स्टेडियम था, शिवाजी पार्क मेरे ख्याल से, वहां पे जाके मैं प्रैक्टिस करता था। और मुंबई के बहुत ही नंबर वन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है जो मेरे घर के बाजू थी, इसलिए मैं अच्छी प्रैक्टिस कर पाया। अन्य भी अच्छे अच्छे प्लेयर है लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इतने अच्छे फैसिलिटीज नहीं मिली है, इसलिए वो नहीं आ सके। तेंदुलकर एक बहुत ही ऑनेस्ट और हम्बल व्यक्ति है वैसा देखा जाए तो, मंडेनता के हिसाब से जो सत्वगुण से बांधा गया है ना, वो ज्यादा उसमें प्रभाव दिखाया जाता है। तो उसने कहा कि दूसरे भी अच्छे लोग हैं लेकिन दूसरों को बिल्कुल बुरा नहीं कहता है कभी, वो कभी उसके ऊपर कोई भी टीका करे वो ज्यादा उनको कभी बोलता ही नहीं उनके बारे में, अपना अपना काम करते रहता है वो। तो उसने भी यही वाक्य बोला था कि मुझे फैसिलिटीज अच्छे मिले, लेकिन ये फैसिलिटी जब अच्छे मिलते हैं वो भी पूर्व कर्मानुसार ही मिलते हैं। दूसरा है कभी कभी आता हमारा स्वभाव होता है, स्वभाव बहुत अच्छा होता है कभी कभी हमारा, हमारे में जिद्द होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे में परिस्थिति बहुत विकट हो जाती है, फैसिलिटीज नहीं रहते हैं लेकिन क्या होती है उसमें जिद्द होती है। मैं बचपन से एक व्यक्ति का सुन रहा था कि वो बहुत ही स्लम्स में पैदा हुआ था, बहुत ही हमारे वर्णाश्रम के हिसाब से अगर बाह्य दृष्टि से देखे तो बहुत ही निचले सोसाइटी में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में जाकर आज वो 80 साल का होगा, बाद में जाकर वो नासा में चीफ साइंटिस्ट बन गया इतना। तो क्यों, उसमें एक जिद्द थी, उसमें एक बुद्धिमत्ता थी। ये जिद्द भी हमें जो आती है ना वो हमारे पूर्व कर्म अनुसार आती है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार नहीं है। दूसरा है एटीट्यूड, बिकॉज प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं द प्रोग्रेस ऑफ ए साधका डिपेंड्स ऑन हिज एटीट्यूड, एनवाई के शुरुआत में प्रीफेस में लिखते हैं। हमारी जो हर स्थिति में हर क्षेत्र में जो प्रगति है ना वो हमारे दृष्टिकोण से ऊपर निर्भर होती है। दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है, एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार ये आर्यभट्ट जो है जिन्होंने शून्य की खोज की, आर्यभट्ट, ये जोक है, ये वास्तविकता नहीं है लेकिन ये जोक है, आर्यभट्ट ने शून्य निकाला, ये जोक नहीं है, वो सही है। तो आर्यभट्ट ने शून्य शून्य को खोज की, वो आर्यभट्ट एक बार लिख रहे थे कि अगर मैं विकट परिस्थिति में आ जाऊं, मुझे सभी से अगर मदद लेने की जरूरत पड़े तो मेरे मदद के लिए कौन कौन आएगा, मेरे कौन से दोस्त, कौन से रिश्तेदार, कौन से पड़ोसी आएंगे। वो बहुत सोचने लगे, सोच सोच के उन्होंने शून्य की खोज की। क्योंकि उनको लगा कि मुझे कोई भी मदद इस जगत में करने नहीं आता। तो अभी हम मंडेनता से देखते हैं, अध्यात्म की तरफ से नहीं देखते, कि इसका निष्कर्ष दो प्रकार से निकाला जाते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि इस जगत के लोग सभी स्वार्थी है, सभी स्वार्थी है, काम पड़ने पर किसी के मदद को नहीं आते, और इसलिए मुझे अभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ज्यादा किसी से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अर्थात ये भी थोड़ा भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी शिक्षाएं हैं ये भी, लेकिन अलग तरीके से है ये। तो मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए और मेरा मुझे देखना चाहिए, ये सब स्वार्थी लोग हैं, मैं भी सभी से संबंध बंद कर दूंगा, इसे कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया कि लोग मुझे मदद नहीं कर रहे, लोग मेरे मदद में नहीं आ रहे, तो लोगों में तो कुछ गलती नहीं, कुछ गलती जरूर मेरे में होगी। क्या मैं जाता हूं लोगों को मदद करने के लिए, क्या मेरे संबंध ठीक से है लोगों से, क्या मैं लोगों से अच्छा वर्तन करता हूं, क्या लोगों के लिए मैं लोगों में मुझ में विश्वास नहीं है, क्या मुझे अपना विश्वास लोगों के प्रति जो है वो बढ़ाना चाहिए, ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसे एटीट्यूड कहते हैं। तो नेवर डाई एटीट्यूड किस लोगों का होता है कि किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत ही विकट परिस्थिति में हो, फिर भी उठकर लड़ने की ताकत उनमें होती है। ये एटीट्यूड भी कर्मानुसार आता है, ये एटीट्यूड भी हमारा नहीं है, ये हमारे कर्मानुसार आता है। प्रकृते क्रियमानानी गुणे कर्मानी सर्वशः। तो एटीट्यूड वाले बोलते कि इतनी परिस्थिति थी भाई, तो प्रभु बोलने वाला तो डिवोटी होगा ना, तो इतनी विकट परिस्थिति भाई, लेकिन मैं लड़ा, मैं बहुत लड़ा, सच कहता हूं मैं लड़ा, ऐसे डायलॉग होते हैं ना, लड़ते लड़ते इस कदम पर आ चुका हूं मैं। तो ये भी एटीट्यूड जो आता है ना, ये भी दृष्टिकोण आता है ना, ये भी कैसे आता है, हमारे कर्मानुसार आता है। लेकिन केवल एक ही चीज है जो हमारी है और वो है हमारी इच्छा शक्ति। हमारी इच्छा शक्ति है ये हमारी है, जो कृष्ण ने हमें, वो भी कृष्ण ने ही दी है हमें, वो कृष्ण कभी भी निकाल सकते हैं हमारा फ्री विल, लेकिन वो भी कृष्ण ने दी है, इसे ज्यादा हमें आइटना नहीं चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण की तरफ वजह से कर रहे हैं। मान लो कि एक व्यक्ति है, वो बहुत ही विकट 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 परिस्थिति में है, बहुत ही विकट परिस्थिति में है, सभी चीजें उसके विपरीत है। पहले मैं नेगेटिव उदाहरण देना चाहूंगा, सभी चीजें बहुत अच्छी है, उसका परिस्थिति बहुत अच्छा है, उसके फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्यारा स्वभाव है उसका, एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये सब सारे रिसोर्सेस कृष्ण ने उसको देने के बाद भी उसके पास फ्री विल है कि ये एटीट्यूड कृष्ण भक्ति में लगाए कि न लगाए, ये फैसिलिटीज कृष्ण भक्ति में लगाए कि न लगाए। अभी देखिए आप तेंदुलकर का उदाहरण लेंगे, कितना उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, कितने बार वो गिर गया है लेकिन कितने बार फिर भी उठने की ताकत रखी है उसने, लेकिन भक्ति स्वीकार की है क्या नहीं की है। तो ये फ्री विल हमारे साथ है और किसी के साथ ये कुछ भी नहीं होगा। हम देखते कि इतने बुरे बुरे एटीट्यूड के लोग होते हैं, एक नंबर के खड़ूस बोलकर जाने जाते हैं, एक नंबर के बदमाश बोलकर जाने जाते थे, लेकिन जैसे हम भक्ति का बोलते हैं ऐसे आंखें उनकी बड़ी बड़ी होने लगती है, खुश हो जाते हैं एकदम, और एटीट्यूड ना होने के बावजूद भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते, भक्तों के प्रति दंडवत डालना शुरू कर देते हैं भक्तों को, क्योंकि उसका क्या है, उनके पास फ्री विल है लेकिन परिस्थिति नहीं है, लेकिन उनको तकलीफें बहुत आती है एटीट्यूड की वजह से, उनके संबंध अच्छे नहीं होते किसी से, उनके जो सुविधाएं होती है वो अच्छी नहीं होती है, ये सब होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि, और ये जो कर्म का जो फल है उसके बारे में भी प्रभुपाद जो बताते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि कर्म के जो हमारे जो है ना, कुछ कर्म होते हैं वो संचित कर्म होते हैं, संचित कर्म यानी कर्म का स्टॉक होता है, एक पाइल्ड अप जो कर्म होते हैं, हमने जो कर्म ऑलरेडी किए हैं वो होते हैं, और दूसरे जो है वो हम करने वाले हैं आगे चलकर, जो अभी कुछ पता ही नहीं है ये जन्म में करेंगे या अगले जन्म में करेंगे, अभी कुछ भी नहीं है उसका, इन्हें अता पता भी नहीं है आज तक उसको। तो ये जो संचित कर्म है ना, वो हमें बांध देते हैं एक प्रकार के स्वभाव में, एक प्रकार के गुणों के प्रभाव से, और एक प्रकार के कर्म करने के लिए बांध देते हैं हमें। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि कूट और बीज, तो कूट यानी क्या, जैसे हम बोलते हैं ना सिंपल भाषा में कहा जाए तो कूट नीति, तो कर्म बुरे कर्म करने की, पाप कृत्य करने की जो टेंडेंसी है उसे कूट कहा गया है। कोई व्यक्ति होता है अगर चोरी करने का उसे अवसर भी प्राप्त हो तो भी वो नहीं करेगा, और कोई है तो चोरी करने का अवसर भी नहीं है तो वो बनाएगा। जैसे हम कॉलेज में देखते हैं कि जो कॉपी करना होता है ना एग्जाम में, 1000 में से 999 लोग जो होते हैं उनके सामने अगर ओपन बुक भी रख दे आप तो भी वो देखेंगे नहीं, उसको बोलेंगे कोई भी देखने के लिए नहीं ये किताब है आपके पास, लेकिन वो देखेंगे नहीं क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं, बोलते नहीं मुझे परफॉर्म करना है, मुझे देखना है मुझे कितना आता है, तो ये है अच्छा व्यक्ति। लेकिन कोई व्यक्ति होते हैं पूरा पहरा होता है उनके ऊपर, कैमरा होते हैं, बाजू सुपरवाइजर खड़ा होता है, लेकिन नए नए तरीके निकालते हैं कॉपी करने के, क्योंकि उनमें है ना कूटनीति बहुत ज्यादा है, पाप करने की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, हर जगह अवसर देखते कि कैसे मैं पाप करूं। तो ये भी स्वभाव आता है, हमारे कर्मानुसार आता है। तो दूसरा जो है बीज, बीज यानी क्या है, जब हम ये कूट की वजह से कोई पाप कर बैठते हैं तो वो क्या होता है, उसका पाप के फलों का बीज पेरा गया, अभी ये तो कभी ना कभी तो उसके फल लगने वाली ही है, तो ये बीज है। तो हमें एक सवाल उठता, दूसरा मैं पहले बोल लेता हूं कि उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी क्या है, जो हमारे संचित कर्म है उनमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाला गया है, ये लो अभी भोग लो ये जन्म में बोलकर। उसमें भी दो है, फल उन्मुख जिसे बहुत सारे इसमें आगामी भी कहा गया है, आगामी आगामी आकर्षण जो बोलते हैं ना वैसे, फल उन्मुख यानी अबाउट टू फ्रक्टिफाई, जो आने वाले है हमें, और दूसरे है क्रियमान जो हम भोग रहे हैं। कभी कभी हमको क्या होता है कि शरीर अच्छा नहीं मिलता है, कोई तकलीफें होती है, कोई विपरीत स्वभाव होता है हमारा, यह है क्रियमान, यह भोग रहे हम, प्रारब्ध का ही भाग है ये। और दूसरा है फल उन्मुख यानी जो आने वाला है, अभी बस स्टोर में का है, बोलते ना प्रभु जी बोलते 2 साल तो कुछ नहीं था, अभी कैसे आ गया पता नहीं मेरा भी थोड़ा कमर में लोअर बैक में थोड़ा पेन दे रहा है, MRI वगैरह निकाला तो कुछ निकल गया उसमें, तो मैं ऐसा बोला गलती से बोल गया कि अरे कुछ 6 महीने तक तो कुछ नहीं था, मैं जोर जोर से उड़ी मार रहा था, यह क्या हो गया। तो यह क्या हो गया, फल उन्मुख अभी आने वाला है, ऐसा पता नहीं क्या स्टोर में है, मौत आते वक्त कैसे हो जाएगा, बेड रिडन हो जाएंगे या कौन से इतने रोग है, साइंटिस्ट को भी लिखने बोले ना उनका एग्जाम लेके सारे रोगों के नाम लिखो तो 100 में से 100 मिलेंगे, तो साइंटिस्ट को 10 भी नहीं मिलेंगे, डॉक्टर्स को 10 भी मार्क नहीं मिलेंगे, इतने रोग है, नए नए रोग खुल रहे, नए नए आगे आ रहे, कुछ ऐसे रोग है कि वो डॉक्टर बोलते पता नहीं ये कौन सा रोग है, शायद ये चार रोगों का एक साथ आ गया बोले आपको। एक व्यक्ति को बता रहे थे। ऐसे तो ये हो गया ये, तो जैसे एक हमारे वैदिक साहित्य में ये भी एक उपमा दी है कि जो एक बोमैन होता है, यानी जो आर्चर होता है, जो ऐसा ये करता है कि भाई क्या बोलते हैं उसे, धनुर्धर होता है, धनुर्धर के इसमें चार प्रकार के ये होते हैं, एक तो उसके तरकश में होते हैं, दूसरे उसे बाण में लगाए हुआ होता है, तीसरा जो छूट चुका है, और चौथा जो जाके लग चुका है टारगेट पर। तो ये जो है, ये जो उसको बोलते हैं वो संचित कर्म बोलते हैं, ये फटा फटा निकाल के मार सकता है वो। दूसरा जो है वो बाण पे लगा चुका है, अभी वो उसके हाथ में, लेकिन वो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, राइट। और तीसरा जो होता है वो छोड़ चुका है, अब छोड़ दिया, अभी क्या करे, एक बार मुंह से बात निकल गई, तीर से कमान, क्या बोलते, कमान से तीर निकल गया तो रोक नहीं पाते। और जो लग चुका है वो, तो भक्ति क्या करती है, जो तर्कश में है, जो मन वो बाण पे चढ़ाया हुआ है, वो डालना है कि डालना है वो आप सोचो, ये ताकत देती है। यानी कूट और बीजों को नेस्त नाबूद करने की शक्ति जो है हमारे भक्ति में है, कृष्ण नाम में है। नाम नो ही यावत शक्ति पाप निर्हरे न हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी न रहा। इतने पाप तो एक पापी भी एक क्षण में नहीं कर सकता, पापियों में से पातकम पातकी, पापियों में से जो सर्वोत्तम पापी है वो भी नहीं कर सकता, इतने पाप एक हरिनाम एक क्षण में गायब कर सकता है, जला सकता है। कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। लेकिन जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध सहने की शक्ति भी भक्ति देती है। अभी सपोज मान लो कि किसी को उसका फल मिल चुका है, कोई बीमारी हो चुकी है, जैसे हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद के शिष्य है, बड़े बड़े सन्यासी है हमारे, उनको बहुत सारे इतना प्रचार करते हैं, इतना ये करते हैं, उनके तो कर्म के फल ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एक किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो उसके अनेक कारण होते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके कर्म के फल होते हैं, जो साधक होता है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए भगवान देते हैं, और जो उच्चतम भक्त होते हैं उनके माध्यम से हमको सिखाया जाता है कि देखो उनके इतने भी, उनको इतने तकलीफ फिर भी देखो कि एक से टस से मस नहीं हो रहे कृष्ण भावना से, ये सिखाने के लिए। तो इनके तो उस हिसाब से हम अगर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े होते हैं उनको भी होते हैं, लेकिन उनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनसे, फिर भी भक्ति में डटे रहते कि उनकी वो शक्ति मिलती है। वैसे तो कृष्ण भावना इसी तरह से सभी कर्मों के फलों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरा जो हमारे बद्ध जीवन का कारण है वो है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो जो है ना, ये बद्ध जीव का ये पहला स्वभाव क्या है बद्ध जीव का, तो है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। करता मिति मन्यते, कि मैं ही सब किया है, मैं ही सब करता हूं, आई एम द डूअर, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं ही सबका श्रेय लेना चाहता हूं, मुझे ही। वो मैंने बहुत अच्छा सुना था, हमारे एक प्रभुपाद के डिसाइपल सन्यासी ने लिखा था, मैं नाम नहीं याद कर रहा है मुझे, तो पीटर बुरवाश, वो जो टेनिस प्लेयर ना, हाँ टेनिस प्लेयर को वो बाद में अंत में एड्स हो गया था, क्योंकि कुछ सर्जरी करते वक्त वो कुछ इन्फेक्शन हो गया था उनको। तो उन्होंने उसको एक बार पूछा गया कि आपको ऐसा नहीं लगा कि ये भगवान ने आपकी तरफ अन्याय किया है आपके प्रति, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि 50,000 लोग हर साल टेनिस प्लेयर बनने का ये कर सकते हैं, उसमें से 5,000 तो ही सिर्फ आगे जाते हैं, उसमें से 500 सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, उसमें से 50 ही केवल वो कौन सा बोलते हैं उसे, वो टूर्नामेंट होता है ना, ग्रैंड स्लैम खेलते हैं, और उसमें से 5 ही केवल कभी कभी जीत पाते हैं, और उनमें से मैं हूँ, तभी मैंने कंप्लेन नहीं की तो अभी क्यों कंप्लेन की, राइट। तो उस सन्यासी ने बाद में लिखा हमारे इस्कॉन के, उन्होंने लिखा कि इट इज द फॉल्स ईगो ऑफ ए कंडीशन लिविंग एंटिटी दैट ही थिंक्स दैट ही डिजर्व्स द बेस्ट। ये मिथ्या अहंकार है एक बद्ध जीव का मेरे जैसे, कि हर वक्त मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे बेस्ट ही मिलना चाहिए, ये मिला तो ये ऐसा क्यों मिला, वो मिला तो ऐसा क्यों मिला, ये मिला तो ऐसा क्यों मिला, लाइक दैट। तो ये मिस आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा जो है कि आई एम द एंजॉयर, कि मैं ही एंजॉयर हूं, मैं ही भोगता हूं, एक दो मिनट लूंगा और मैं ही भोगता हूं और कृष्ण भोगता। तो भक्ति के दो तत्व है, एक है कि कृष्ण भोगता है, लेकिन कृष्ण भोगता इतना इनफ नहीं है। बहुत लोग बोलते कृष्ण भी भोगता है मैं भी भोगता हूं, तो कृष्ण भोगता है इतना इनफ नहीं है। कृष्ण भोगता है और आप कौन हो, आप सर्वंट हो। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसा में समझाते हैं प्रभुपाद कि कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, कृष्णा इज द कंट्रोलर, देन हु आर वी आर द कोऑपरेटर्स। वी आर नेदर द एंजॉयर नॉर द कंट्रोलर नॉर द एंजॉयर नॉर द प्रोप्राइटर, वी आर द कोऑपरेटर्स। वाई वी हैव टू बी कोऑपरेटर, देर आर मेनी रीजन्स दैट आवर कृष्णा की भक्ति करना है, प्यूरिफाई करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब है, लेकिन मतलब की चीज है कि दैट्स द ओनली वे वी कैन एंजॉय। देर इज नो अदर वे वी कैन एंजॉय एक्सेप्ट बाय कोऑपरेटिंग विद कृष्णा इन हिज एंजॉयमेंट। इफ यू एंजॉय इन हिज एंजॉयमेंट, इफ यू कोऑपरेट एंड एंजॉय इन हिज एंजॉयमेंट, देन ओनली एंजॉय, दैट इज द ओनली लेजिटिमेट वैलिडेटेड इटरनल ऑथेंटिक एंजॉयमेंट। इसलिए तो कम से कम कृष्णा को कोऑपरेट करें हम। और तो तीसरा है कि अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं और मेरा जो ये है उसकी भावना जो है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा ये करती है। तो मुझे एक और एक पार्ट लेना था लेकिन मेरा टाइम मिसमैनेजमेंट हो गया पूरी तरह से, और इसमें से छूटने का जैसे प्रभुपाद बताते हैं आगे चलकर, वो है एक ही है कि भगवान के भक्ति को स्वीकार करना। उसमें मैंने 5 अंग लिखे थे, उसमें से केवल एक ही अंग के बारे में बताऊँगा, वो है प्रार्थना। और भगवतम के 3rd स्कंद के 90 अध्याय में ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु के बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थना बोलते हैं, और उस प्रार्थनाओं के 5 हिस्से हैं, और वो 5 हिस्सों में पहला हिस्सा है कैसे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो बहुत बार हमें ना डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि भगवान ये मेरा ये कर दो, मेरी ये अड़चन ये सॉल्व कर दो, तो भगवान बोलते अरे क्या रुक रुक थोड़ा क्या चल रहा है। तो ये जो प्रार्थना है ब्रह्मा जी सिखाते कैसे, पहले बोलते हैं पहले भगवान का गुणगान करते हैं कि कैसे आप सुप्रीम ऑब्जेक्ट हो, आपका फॉर्म सुप्रीम है, आपका स्वभाव सुप्रीम है। उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे बद्ध जीव की अवस्था होती है, कैसा बद्ध जीव दुर्भागी है, बद्ध जीव की अवस्था बताते हैं। तीसरा बताते हैं कि कैसे आप जो है ना पतित पावन हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपने सभी को कैसे मदद की है, देवताओं को भी कैसे मदद की है, अभक्तों को भी कैसे मदद की है। चौथा बताते हैं कि ये तो ठीक है भगवान ग्रेट है, सभी बद्ध जीवों की अवस्था ये है, आप ये करते हैं, लेकिन आपका क्या है, यानी मेरा क्या है। तो बोलते हैं कि मैं भी आपके ऊपर निर्भर हूं पूरी तरह से, मुझे भी आपकी कृपा की जरूरत है, मुझे भी आपकी कृपा की आवश्यकता है। ये हो गए पहले 4 पार्ट। पहला है भगवान का गुणगान, दूसरा है कि हमारी और बद्ध अवस्था का वर्णन करना, तीसरा है कि भगवान कैसे कृपालु है और ऐसे अवस्था में भगवान कैसे मदद करते हैं, चौथा है कि मैं किस तरह से पूरी तरह से, मेरा कोई और अन्य आधार नहीं है, शरण नहीं है, आप ही हो। और उसके बाद फिर बेनिडिक्शंस मांगते हैं कि मुझे शक्ति दे, मुझे ईगो ना दे, ये दे वो दे, फिर भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, ब्रह्मा जी को देते हैं। तो इस तरह से अगर हम भगवान का हरदम गुणगान करें, हमें मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक लीला में जब ब्रह्मा जी और देवताएं मांगने आते हैं ब्रह्मा भगवान से, तो पहले उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत स्मित करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और ब्रह्मा जी और देवता फिर मांगना शुरू कर देते हैं कि सब इस तरह इधर ये ना पूरे राक्षस आ चुके हैं, असुर आ चुके हैं, बहुत हैरान हो चुके हैं सब पृथ्वी के लोग, तो आप आइए और उनसे हमको बचाइए। तो भगवान बोलते हैं कि आपको ये मांगने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो वैसे भी देने वाला था आपको, आपने इतने अच्छे ग्लोरिफिकेशन किए, इसके बाद मांगा। तो वैसे तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ग्लोरीफाई करना है। और मांगना है तो केवल एक ही चीज मांगना है, और वो है कृष्ण की सेवा, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शुद्ध होना हमारे हाथ में नहीं है, गोलोक जाना हमारी इच्छा होकर भी हमारी क्या बोलते हैं उसे क्वालिफिकेशन नहीं है। कृष्ण प्रेम पाने हमारे हृदय में जागृत करना शायद बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन एक चीज है जो हमें हर वक्त मिलेगी, जरूर मिलेगी, सबको मिलेगी, और इस्कॉन में तो भरपूर मिलेगी, बिना मांगे मिलेंगी, मांगेंगे तो और मिलेंगी और वो है कृष्ण सेवा। और सबसे बड़ी कृष्ण सेवा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम कृष्ण सेवा कैसी है, क्योंकि एक माता पिता चाहते हैं कि बच्चा अगर स्वयं की देखभाल ठीक से करे तो ही मैं प्रसन्न। एक बच्चा पूछता है मम्मी से कि मम्मी मम्मी मैं क्या करूं आपकी प्रसन्नता के लिए। मम्मी बोलती कुछ मत कर, खुद का ख्याल रख ठीक से। तो भगवान बोलते हैं आप मेरे पास आ जाओ, मेरी सेवा में लग जाओ, आप आनंदी हो जाओ, यही मेरी खुशी है। इसलिए जब हम हरि नाम लेते हैं इसलिए भगवान खुश होते हैं। उनको कोई मेरा नाम ले रहे देखो ऐसा बोलकर खुश नहीं होते, वो ईगो से बोलते मेरा नाम ले रहा है अभी ये उसको आनंद मिल रहा है, तो खुश हो जाते हैं भगवान। और साथ साथ हरि नाम के साथ साथ एक स्पेशल सेवा भी हमारे पास इस्कॉन में क्या होता है, एक इटर्नल सेवा होती है, और एक इटर्नल में कंपार्टमेंट्स होते हैं। जब जन्माष्टमी आती है तो हमारी इंटरनल सेवा फंड कलेक्शन हो जाती है, जब दिसंबर आता है तो हमारी इंटरनल सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और बहुत सारे भक्त बहुत अच्छी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा में से एक सेवा है कि जो गोलोक में नहीं है, जो केवल भौतिक जगत में ही है, और वो है कृष्ण भक्ति में सबको लगाना। इसलिए पुस्तक वितरण से हम सबको कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं, और साथ साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ लोगों को और एक शिक्षाएं दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जाए, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जाए, गौर भक्त वृंद की जाए, नितय गौर प्रेमानंदे हरिर्।